आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और हम लोग आपकी विस्टास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है द एनिमी। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में देखा था कि डॉक्टर सदाओ होकी जो है वो एक जापानी सर्जन और एक साइंटिस्ट है। उनके और उनके फादर की एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप रही है, जहां पे उनके फादर का एक ही एम था अपने लाइफ में कि वो डॉक्टर सदाओ को एक अच्छा सर्जन बनता हुआ देखे, और इसी कारण से उन्होंने 22 साल की उम्र में डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेज दिया था पढ़ने के लिए। उन्होंने अमेरिका से ही अपनी डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करी और वहीं उनकी मुलाकात उनकी बीवी यानी हाना से होती है। उन्हें पता था कि उनके फादर जो है वो किसी जापानीज लड़की के अलावा उनसे शादी नहीं करा सकते। इस वजह से जब वो हाना से मिले और उन्हें पता चला कि वो भी जापानीज हैं, उनके इंटरेस्ट मिलते हैं, तो उन्होंने उनको एक शादी के लिए प्रपोजल रखा। जब दोनों ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, तब वो दोनों वापस जापान आते हैं और उनके फादर के सामने उन दोनों की प्योर जापानीज तरीके से शादी भी हो जाती है। अब डॉक्टर सदाओ अपने बचपन के घर में यानी समुद्र के किनारे बना एक कोस्टल विला, वहां अपने बीवी और अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं। अब मौसम गर्मी से ठंड की ओर आने लगा है और डॉक्टर सदाओ अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर के देखते हैं कि किस तरह पूरे समुद्र को कोहरे की एक घनी शीट ने ढक लिया होता है। और जैसे ही वो कोहरा उनके घर तक पहुंचाता है, तब डॉक्टर सदाओ अपने घर में वापस चले जाते हैं। वो और उनकी बीवी हाना अपने वैरेंडे में खड़े होकर के समुद्र की ओर देख ही रहे होते हैं कि उस कोहरे से निकलता हुआ एक इंसान दिखाई देता है। सबसे पहले तो उन्हें ये लगता है कि वो कोई मछुआरा होगा, क्योंकि उनके घर के आसपास के जो गांव हैं वहां मछुआरे रहते हैं। तो अब जब डॉक्टर सदाओ और हाना उसके पास जाते हैं उसके बचाव के लिए, तब देखते हैं कि वो इंसान बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका है और उसके सारे कपड़े भी फट चुके हैं। और जब डॉक्टर सदाओ उसका इंस्पेक्शन करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उसकी पीठ में गोली भी लगी हुई है, जिसकी वजह से वहां से खून आ रहा है और हो सकता है कि वो किसी चट्टान से टकराया हो और वो घाव जो है वापस से ताजा हो गया हो। जब उस इंसान को वो दोनों पलटते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो इंसान अमेरिकन नेवी को बिलोंग करता था और शायद वो जापानीज आर्मी के कैद से भाग के आया था और इसी वजह से उसके शरीर पे गोलियों के निशान भी थे। अब डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि है तो वो इंसान बहुत बुरी तरह से घायल, लेकिन वो फिर भी उनका दुश्मन है, यानी वो एक अमेरिकन है और उस टाइम पे जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही थी। तो अब वो लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या वो इंसानियत का फर्ज निभाएं और उस इंसान की जान बचाएं, या फिर उसको पुलिस के हवाले करके देशभक्ति का फर्ज निभाएं। और थोड़ी बहस के बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो उस इंसान का इलाज करेंगे और उस पर ऑपरेशन करेंगे। फिर वो अपने घर उस इंसान को ले आते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। डॉक्टर सदाओ के बहुत सोचने पर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फाइनली वो उसकी सर्जरी करेंगे और उसकी बुलेट निकालेंगे, क्योंकि वो उस इंसान को कहीं ना कहीं बचाना चाहते थे। लेकिन उस इंसान की सर्जरी से पहले उसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी और वो काफी गंदा हो रहा। तो हाना उन्हें कहती है कि वो नहीं चाहती कि डॉक्टर सदाओ उन्हें टच भी करें, और इस वजह से वो कहती है कि वो अपने किसी एक सर्वेंट को कह देंगी कि उसे नहला दे। लेकिन जब ये बात सर्वेंट्स को पता चलती है कि उनके घर में एक अमेरिकन है, वो भी एक नेवी का पर्सनल, तब जो है वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं कि हमारे मास्टर जो है उनका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दुश्मन मुल्क का इंसान। तो अब जो है वो खुद हाना उस इंसान की सफाई करती है और तब तक डॉक्टर सदाओ अपनी फुल तैयारी के साथ सर्जरी के लिए आगे आ जाते हैं। अब ये होता है कि हाना को एनेस्थीसिया देने को बोलते हैं डॉक्टर सदाओ, लेकिन क्योंकि हाना ने कभी भी एक सर्जरी होते हुए नहीं देखी थी और ना ही उन्हें पता था कि एनेस्थीसिया कैसे देते हैं, तो जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने उस इंसान पे अपना ऑपरेशन स्टार्ट करा, वैसे ही इतना सारा ब्लड देख करके हाना जो है अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वो जाकर के उल्टी कर देती है। डॉक्टर सदाओ अपने पेशेंट्स को लेकर के इतना सीरियस रहते हैं कि वो एक बार गए भी नहीं चेक करने कि हाना को क्या हुआ है। कुछ देर बाद हाना खुद ब खुद उस कमरे में आ जाती है और वो एनेस्थीसिया देने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही वो एनेस्थीसिया देती है, वो इंसान गहरी नींद में चला जाता है और डॉक्टर सदाओ अपनी सर्जरी शुरू करते हैं। और जैसे ही वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, कुछ किडनी के पास उनके उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ टकराता है और फिर उन्हें अपनी एनाटॉमी क्लास के प्रोफेसर की याद आती है, जो कि उन्हें ये बताते हैं कि अगर आप एक बॉडी को जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, और फिर भी अगर आप उसकी सर्जरी करते हो या उस पे ऑपरेट करते हो, तो ये मर्डर है, यानी एक हत्या है और कुछ नहीं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक पढ़ा था, अब हम लोग पेज नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 35, सेकंड पैराग्राफ। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मर्मर। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट्स व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वॉज आउट। The man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. Guts! They got my guts! He muttered, choking. Sadao! Hana cried sharply. Hush! Sadao said. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough. If he wanted the man to live, to give hope. But certainly, I do not want this man to live, he thought. No more anesthetic, he told Hana. He turned as swiftly as though he never had paused, and from his medicines, he chose a small vial and from it filled the hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice, and then grew stronger. This man will live in spite of all, he said to Hana and sighed. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified, when he perceived where he was. Then Hana felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. So, अब जो है उन लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि कहीं किडनी के पास जाकर के कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन डॉक्टर सदाओ की एक हैबिट रही है कि अपने पेशेंट्स को वो एज अ फ्रेंड बिलीव करते हैं और उनसे बीच सर्जरी में बातें भी किया करते हैं, जब वो ये भूल जाते हैं कि वो एक सर्जरी के बीच में है, और तब वो उन्हें बताते हैं कि किडनी से जस्ट छू करके वो निकल गई है और इस वजह से वो अभी भी सेफ है। और फिर क्या होता है, फिर जो है जो हमारे पेशेंट होते हैं, यानी जो अमेरिकन नेवी का पर्सनल होता है, वो जो है बीच में ही थोड़ा उठने लगता है और वो क्या चिल्लाता है, गट्स, दे गॉट माई गट्स, यानी वो जो है बेहोशी की हालत में कहीं ना कहीं जापानीज आर्मी से वो बात कर रहा था कि तुम मुझे आजमाना चाहते हो, तुम मुझे आजमा सकते हो। और तभी हाना थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन सदाओ उन्हें चुप करा देते। अब जो है वो इंसान इस तरह से खामोश हुआ कि उसकी जो पल्स थी वो भी पता चलना बंद हो गई, और अब डॉक्टर सदाओ थोड़ा घबरा चुके थे, इस वजह से उन्होंने उसे एक इंजेक्शन लगाया और फिर वापस उसकी पल्स चेक करी। और इस बार जो पल्स चेक करी, तब जो है थोड़ी स्टेबलाइज हो चुकी थी उनकी पल्स। अब उन्होंने हाना से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान एक फाइटर है और कितने भी हालात खराब हो जाएं, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव जरूर करेगा। कुछ टाइम बाद उस इंसान ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें किस कलर की थी, ब्लू, जो कि हमें फिर से एक चीज दिखाता है कि अमेरिकन्स का जो स्किन कलर होता है वो भी जो है वो काफी लाइट होता है, उनके बाल जो होते हैं वो गोल्डन होते हैं, ब्लॉन्ड होते हैं, और उनकी आईज जो होती है वो कैसी होती है, ब्लू होती है। और जब हम लोग जापान साइड पे आएंगे तो उनके बाल जो है वो लंबे, स्ट्रेट और काले होते हैं, और उनकी आंखें भी ब्राउन या फिर प्योर ब्लैक होती है। तो आप लोग यहाँ पे भी एक डिफरेंस देख सकते हो। सो जब उस इंसान ने वापस अपनी आंखें खोली, तब वो ऑफकोर्स थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ है और सब कुछ उसको बहुत ही अनजान सा लग रहा था। उसकी ये हालत देख करके हाना को लगा जैसे कि उसे अपोलोजाइज करना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हाना उसे खुद ही सर्व करने लगी, यानी उसकी खुद ही देखभाल करने लगी, क्योंकि कोई और जो उनका नौकर था वो उस कमरे में कदम भी नहीं रखना चाहता था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. And so she knelt and fed him gently from the Brooklyn spoon. He ate unwillingly, but still he ate. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with effort. Lie down. Do you want to die? Sadao cried. He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? For a moment, Sadao did not answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought to, of course, to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. So, ab jo hai, wo bichara kafi dara hua tha, kyunki wo kafi young tha, hame story mein pehle hi pata chal jata hai ki wo abhi 25 years ka bhi nahi dikh raha tha. To wo bichara kafi dar jata hai, jaise hi jo hai wo Hana uski taraf aati hai. लेकिन तब जो है हाना कहती है कि डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी. तब उस इंसान को काफी ज्यादा आश्चर्य होता है कि वो ऐसे सेटिंग में है, वो जानता है कि वो कहीं ना कहीं जापान में है और वो इंग्लिश कैसे बोल रही. तो वो उससे पूछता है कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो. तब हाना बताती है कि मैं काफी अरसे तक अमेरिका में थी इस वजह से. अब ये दिखता है कि वो अमेरिकन इंसान कुछ बोलना चाहता है लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाता है. और फिर जो है हाना उसे धीरे धीरे करके खाना खिलाती. वो तैयार तो नहीं था खाना खाने के लिए लेकिन फिर भी उसने थोड़ा खाया. और फिर कुछ टाइम बाद वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया. जब ऑपरेशन को 3 दिन हो गए थे तब सदाओ वापस से उस इंसान को चेक करने आते हैं और क्या देखते हैं कि वो अमेरिकन लड़का बैठा हुआ है. और तभी डॉक्टर सदाओ उसे डांट लगाते हैं कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम ऐसी हरकतें करो, क्योंकि अगर इस हालत में तुम बैठे या जरा भी हिलने की कोशिश करी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है. तब वो अमेरिकन लड़का डॉक्टर सदाओ से पूछता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे वापस से पुलिस को दे दोगे? डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अभी तक उन्हें खुद भी नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए. और जैसे ही वो कुछ बोलने लगता है वैसे ही वो उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना है, कुछ भी नहीं, जितना मैं अंदाजा लगा पाया हूँ उतना ही मेरे लिए काफी है और मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं जानना है. जब तक मैं ना पूछूं तब तक मुझे कुछ मत बताना. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल. ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिटर लाइन. आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ. ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल. सदाओ, Yumi tells me the servant feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. It is not true, Sadao said harshly. Americans are our enemies. But I have been trained not to let a man die if I can help it. The servants cannot understand that, she said anxiously. No, he agreed. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their curtsy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life, and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. My old master's son knows very well that he ought to do, he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? अब उस अमेरिकन लड़के ने और डॉक्टर सदाव ने कुछ लुक्स एक्सचेंज करे, जहां पे उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करें। फिर उस प्रिजनर ने कहा कि ठीक है, वो अपने से कुछ भी नहीं बताएगा। फिर जब सदाव उस रूम से बाहर आता है, तब देखता है कि हाना कुछ परेशान सी है। तब हाना उसे बताती है कि सारे सर्वेंट्स ने जो है वो कह रखा है कि अगर हम लोग उस प्रिजनर की वापस से हेल्प करते रहे तब वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और पुलिस को जाकर के सारा मैटर बता देंगे। जो भी आज तक हुआ है वो सब बता देंगे और हो सकता है कि वो दो का चार लगा के बताए और हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। उस दिन के बाद से वो जितने भी सर्वेंट्स थे वो लोग पोलाइट तो थे, लेकिन हमेशा शक की निगाहों से उन दोनों को देखते रहते थे। यानी हाना और सदाव को हमेशा शक की निगाह से देखते रहते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये लोग इतने वक्त तक अमेरिका में गुजार के आए हैं कि वो भूल चुके हैं कि उनकी असली कंट्री जो है वो जापान है, और इस वजह से अमेरिकन को लेकर के उनके दिल में हमदर्दी है। उनका जो गार्डनर होता है वो कहता है कि सदाव इस बारे में उसको काफी घमंड आ चुका है कि वो जो है किसी की भी जान बचा सकता है, और वो ऐसा वैसा गार्डनर नहीं था बल्कि वो काफी पुराना सर्वेंट था, वो सदाव के फादर ने रखा हुआ था। और वो इतना अच्छा गार्डनर था कि उसने सदाव और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही खूबसूरत जापान का वन ऑफ द बेस्ट मॉस गार्डन क्रिएट किया था। और वो फिर कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मास्टर को यानी सदाव को पता था कि क्या करना है, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब वो इंसान जो है वो खून उससे निकल रहा था तब जो है सदाव ने क्यों नहीं छोड़ा उसको। अगर सदाव उसे छोड़ देता तो वो मर जाता। द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेंप्टुअसली। शी स्पिल्ड a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? They did not try to hide what they said from the ears of Hana as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. That they were right she knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. I was not sentimental liking for the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, anyway, let me tell you that my name is Tom. She had only bowed her little distance bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in the house. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. So, ab jo hai, wo sare naukar jo hai is bare mein discuss kar rahe the ki ab in logo ka kya hoga, ab inke bachcho ka kya hoga. अब जो है अगर ये लोग जो है गद्दार घोषित कर दिए गए तब इनके बच्चों का फ्यूचर कुछ भी नहीं बचेगा। और ये लोग पर्पसली अपनी बातें सुनाना चाह रहे थे किसको, हाना को, क्योंकि वो जानते ही थे कि हाना जो है वहां पे खड़ी हुई है और वो चाहते थे अपने जो विचार है वो हाना तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात को उन दोनों पे प्रेशराइज कर रहे थे कि उन्हें जो है इस अमेरिकन से वास्ता छुड़वा देना चाहिए, यानी उसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए और उसे जो है या तो मरने के लिए छोड़ देना चाहिए या नहीं तो पुलिस को उठा करके दे देना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर सदाव वो डेली आकर के उस अमेरिकन को एक रेगुलर पेशेंट की तरह आकर के चेक करते थे, उसका घाव बड़ा कि नहीं वो देखा करते थे, और जो है उसकी जो लास्ट स्टिचेस थी वो भी जो है वो आज सुबह निकाल दी गई थी, और 2 हफ्ते में वो इंसान पहले जैसा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। अब जो है सदाओ अपने ऑफिस में बैठ करके एक लेटर टाइप करता है, और वो भी किसको, पुलिस के चीफ को, और उस लेटर में वो सारी बातें बता देना चाहता है कि किस तरह वो इंसान उसके दरवाजे पे आकर के किस तरह से गिरा और उसके बाद क्या क्या हुआ। लेकिन वो पूरी कहानी नहीं लिख पाता, वो बस इतना ही बता पाता है कि 21 फरवरी को एक प्रिजनर यानी एक कैदी जो है वो उनके घर के सामने आकर के गिर गया, बस इतना ही लिख पाया, और उसने वो लेटर अपने सीक्रेट ड्रॉयर में रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 things happened. In the morning, the servants left together, their belongings tied in large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house was not clean and the food was not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. They were crying, but she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. If the baby misses me too much tonight, send for me. I am going to my own house and you know where it is. Thank you, Hannah said smiling. But she told herself she would not send for Yumi, however the baby cried. She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? अब उस incident से ठीक 7 दिन बाद 2 चीजें हुई। जब हाना सुबह उठी तब उसने देखा कि सारा घर वैसे ही पड़ा है, ना खाना पका है ना सफाई हुई है, और तब वो समझ गई कि अब उसके नौकरों ने ये बात ठान ली थी कि वो अब उसके साथ नहीं रहेंगे। जब उसने देखा तो सारे सर्वेंट्स ने अपना अपना सामान बांध लिया था और उस घर से जाने के लिए तैयार थे। हाना वो भी इमोशनल थी, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि उसके इमोशंस दिखें, क्योंकि वो घर की मालकिन थी और वो अपने ग्रेस को अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहती थी। जो कुक और गार्डनर थे वो बहुत पुराने नौकर थे और वो उस टाइम से थे जिस टाइम से सदाओ के फादर थे, और इस वजह से जब वो दोनों उस घर को छोड़ के जा रहे थे तो वो लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और यूमी जो है वो इस वजह से रो रही थी क्योंकि वो जो है बच्चों की दाई थी, और वो बच्चों का सोच करके उसे उसकी याद आती, इस वजह से वो वापस से रोने लगी। इनफैक्ट यूमी ने ये भी कहा कि अगर बच्चे उसे ज्यादा मिस करें तब जो है वो उसे बुलाने के लिए किसी को भेज सकती है, क्योंकि वो अपना पता बता के जाती है और ये भी कहती है कि हाना को पता है कि वो कहाँ रहती है। लेकिन हाना ने दिल ही दिल में ये बात ठान ली थी कि वो यूमी को वापस कभी नहीं बुलाएगी, इनफैक्ट वो किसी भी नौकर को वापस कभी नहीं बुलाएगी। अब अगले दिन हाना जो है वो जब उस प्रिजनर को उस कैदी को खाना देकर के आती है तब वो सदाओ से कुछ बातें करती। वो अब बहुत ही ज्यादा आप समझ लो कि फ्रस्ट्रेट हो चुकी है अपने सिचुएशन से, उसके सारे नौकर जा चुके हैं, वो जान रही है कि जो है वो एक प्रिजनर है और प्रिजनर भी कैसा है कि वो उसका दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो उसकी देखभाल किए ही जा रही है, वो अपने दिल के हाथों मजबूर है, और इस वजह से वो सदाओ से कहती है कि हमें क्यों नहीं कुछ पता चल पा रहा है कि हमें इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए। अब तो हमारे नौकरों को भी पता है कि जो है उसको उनके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग रेगुलर जापानीज जैसे क्यों नहीं हो सकते, हम लोग अपने देश जैसा चल रहा है उसके साथ हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं, और क्यों हम लोग अपने दुश्मन की हेल्प कर रहे हैं। Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely, "Today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale.
Okay, the boy murmured.
Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. Don't thank me too early, Sadao said coldly. He was the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror as unmistakable as an animal's. The scar on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. In the afternoon, the second thing happened. Hana, working hard on the unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. She pointed at him helplessly. So, अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था कि उस दिन जो है वो दो चीजें होती हैं. पहली बात तो जितने भी सर्वेंट्स हैं वो चले जाते हैं, और सर्वेंट्स के जाने के बाद जो है सदाओ और हाना आपस में बात करते हैं. सदाओ जो है वो वापस से जाता है उस अमेरिकन के कमरे में और कहता है कि अब जो है तुम्हें खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए. तुम जो हो अब थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस करो डेली, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन उसके बाद जो है तुम्हें थोड़ा और टाइम बढ़ाना पड़ेगा. अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द जो हो वो बिल्कुल अच्छे हो जाओ. जैसे ही सदाओ ने ये कहा, वैसे ही अमेरिकन को थोड़ा डर लगा, क्योंकि शायद उसे पता था कि अगर वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो सदाओ उसे वापस भेज देगा. फिर भी वो अमेरिकन लड़का डॉक्टर सदाओ को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के. लेकिन डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि इतना जल्दी उन्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है. और फिर से वो जो खौफ था उसके चेहरे पर लौट आता है. फिर से डॉक्टर सदाओ ने उस निशान को देखा जो उसके गर्दन पे थे, जो हाना ने भी सर्जरी के टाइम पे देखे. क्या थे वो निशान? लेकिन सदाओ ने उस इंसान से पूछा भी नहीं. सुबह में ये हुआ था, और जब दोपहर हुई तब दूसरी चीज हुई. हाना जो है जब काम कर रही थी अपने घर में, तब उसने देखा कि एक मैसेंजर है जो कि बिल्कुल ऑफिशियल यूनिफॉर्म में खड़ा है. और तब हाना को डर लगा कि हो सकता है कि सर्वेंट्स ने सबको जाकर के पुलिस वाले को बता दिया है, और इस वजह से वो मैसेंजर उन लोगों को अरेस्ट करने आया है. वो जल्दी से जो है दौड़ करके घर वापस आ जाती है और सदाओ को बताने की कोशिश करती है. लेकिन वो मैसेंजर जो है वो हाना का पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है. और तब जो है वो उसकी तरफ बेचारगी से पॉइंट आउट करती है. सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. ही वॉज इन हिज ऑफिस. द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. Oh, is that all? Hana breathed. All? The messenger exclaimed. Is it not enough? Indeed is. I am very sorry, she replied. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep, and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. So, अब जो है वो सदाओ को दौड़े दौड़े आती है बताने कि कोई मैसेंजर आया हुआ है, वो भी ऑफिशियल यूनिफॉर्म में. और तब जो है सदाओ बुक पढ़ रहा था अपने ऑफिस में, और उसने जो है वो जो पार्टीशन था यानी एक तरफ का जो दरवाजा था वो खोल रखा था ताकि वहां से रोशनी आती रहे, सूरज की रोशनी आती रहे. सदाओ ने पूछा कि क्या हुआ, और फिर जो है वो जल्दी से खड़ा हो गया देख करके कि कोई आर्मी से मैसेंजर आया है. और वो मैसेंजर क्या पैगाम लाया था? वो कहता है कि तुम्हें जो है वो महल आना पड़ेगा, पैलेस आना पड़ेगा, क्योंकि जनरल की तबीयत खराब है, उसका दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा है. तब हाना थोड़ी रिलैक्स होती है और कहती है कि ओ अच्छा, बस इतना ही कहना था. तब मैसेंजर को ये बात काफी अटपटी भी लगती है कि अब क्या चाहिए तुम्हें? मैसेंजर की हालत खराब, जनरल की हालत खराब है, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? सदाओ और हाना दोनों को ही थोड़ी जान में जान आती है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि ये उनके अरेस्ट से रिलेटेड बात नहीं थी, नौकरों ने कुछ भी जाकर के अभी तक पुलिस को नहीं बताया और इस वजह से अभी तक वो लोग सेफ थे। डॉक्टर सदाव जो है जब जनरल का इलाज करने जा रहे होते हैं तो वो हाना को गुड बाय कहते हैं और हाना जो है वो किचन में खड़ी रहती है, वो कोई भी काम नहीं कर रही, बच्चे सो चुके थे और वो जो है वो बस वहां जाकर के बैठ जाती है। वो काफी थक जाती है काम करने से नहीं बल्कि जो उसका डर था उस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे अचानक से डर लगा था कि अब जो है ये लोगों को गद्दार बोल करके जेल में डाल दे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये स्टोरी इस पार्ट में यहां तक देखी है। मैं आपसे वापस से बोलूंगी कि आप अभी तक की जितनी पढ़ी हुई स्टोरी है वो वापस से पढ़िए सो दैट आपको खुद भी समझ आए कि स्टोरी में कैसे कैसे क्या हो रहा है, और मैं आगे की स्टोरी आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।